मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 11 फरवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही स्वागत करता हूं अपने एक मित्र का जिनका नाम है प्रियंका, जो पीली मंदोरी गांव से हैं, जिला फतेहाबाद हरियाणा से, जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए एडमिशन लिया है। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत हम लोग जो आरक्षण की वर्तमान स्थिति है इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, मतलब आरक्षण को लेकर के अभी जो बहस की स्थिति बन गई है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। न्यूज में आपने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के बारे में सुना है जिसकी शुरुआत हो गई है और इस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अभी तक जो भी खबरों में पता लगा है, देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब है कि भारत में इतनी सारी संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं, रीति रिवाज है, खान पान है, पहनावे हैं, मान्यताएं हैं, धर्म के लोग हैं, जातियां हैं, ये इसकी विविधता है। ठीक है, ये इसकी विविधता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत एक है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन केवल एक ही नहीं है बल्कि ये श्रेष्ठ भी है। तो जब संस्कृतियां आपस में एक दूसरे से मिलेंगी जुलेंगी तो इससे एकता की जो भावना है वो और ज्यादा मजबूत होगी। इसके केंद्र में मूल बात यही है कि किस तरह से एक क्षेत्र के लोगों का देश के विभिन्न क्षेत्र के लोगों के साथ सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाया जाए और उनमें तालमेल ज्यादा से ज्यादा बिठाने की कोशिश की जाए। मैंने जो कहा कि इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वो इसलिए क्योंकि जो कल्चर है, संस्कृति है, ये आपके मेंस का बहुत जबरदस्त पाठ्यक्रम है। जबरदस्त मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले साल ही संस्कृति पर 3 प्रश्न पूछे गए थे। 3 प्रश्न बहुत है ना। तो आप अपने सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को यूं कह लीजिए कि अपडेट करने के लिए हो सकता है कि इसमें कुछ नई बातें पा सकें। अदरवाइज इस पर अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो सरकार की इस योजना का उल्लेख आपको करना ही चाहिए। मित्रों आपने ऑस्कर पुरस्कार के बारे में न्यूज में सुना, यहां मैं केवल एक बात आपको बताना चाहूंगा जो थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है। हालांकि सिविल सर्विस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने बंद कर दिए गए हैं कि इस साल जो बेस्ट फिल्म का जो ऑस्कर अवार्ड मिला, ऑस्कर अवार्ड फिल्म अवार्ड होता है जो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है फिल्म जगत में, जैसे हमारे यहां दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत के लिए है, तो उसमें जो फिल्म चुनी गई है वह है पैरासाइट। इसको मैंने विशेष इसलिए कहा है क्योंकि ये पहली गैर हिंदी फिल्म है, पहली गैर अंग्रेजी फिल्म है। अभी तक जो पुरस्कार मिलते थे वो अंग्रेजी फिल्मों को ही मिलते थे और ये दक्षिण कोरिया की फिल्म है। तो चूंकि इसने एक इतिहास बनाया है, 92 साल के इतिहास में बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसने जीता है गैर अंग्रेजी भाषी फिल्म का, तो इसीलिए थोड़ी सी जानकारी आपके इसके बारे में होनी चाहिए। मित्रों एक तूफान के बारे में आज आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा। सिविल सर्विस में अक्सर इसको लेकर के कभी कभी पूछ लिया जाता है। तूफान का नाम है सियारा और ये अभी यूरोप में आया हुआ है और बहुत ही जबरदस्त तूफान है। जगह जगह बाढ़ आ गई है, बस इतना ही अभी ध्यान रखिए। बाद में अगर और कुछ बातें आती हैं सामने तो फिर मैं उसकी चर्चा आपसे करूंगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट योजना शुरू हुई है भारत में, मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको जानना चाहिए, और वह है जीनोम इंडिया परियोजना। जीनोम इंडिया परियोजना बेसिकली ये क्या है, इसके तहत हमारे देश के लगभग 20,000 लोगों के की जीनोम सिक्वेंसिंग की जाएगी। लगभग 20,000 लोगों की जीनोम सिक्वेंसिंग और इसके लिए बकायदे 20 प्रयोगशालाओं को यह काम सौंपा गया है। जीनोम सिक्वेंसिंग को आप सरल तरीके से इस रूप में समझ सकते हैं कि लोगों की जीनेटिक संरचना का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। जीनेटिक संरचना का रिकॉर्ड यानी कि जीन्स, किस किस तरह के जीन्स हैं। सामान्य तरह अगर हम मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो पूछा जा सकता है कि इससे फिर क्या फायदे होंगे, क्या लाभ होगा इससे। तो कुछ मैं लाभ आपको सामान्य तरीके से बता देता हूं कि अभी तक होता क्या था कि जो जेनेटिक बीमारियां हैं उनकी जांच करने के लिए हमें विदेशी डाटा बेस का सहारा लेना पड़ता था और अब वो हमारा अपना ही डाटा बेस होगा। देखिए आप आदमी सभी जगह विदेशों में भी हैं, भारत के लोग भी हैं, लेकिन अगर भारतीय जीन्स को आपको समझना है तो आपको भारत का ही जो जीन्स की जो संरचना है वो ज्यादा मदद कर सकती है, क्योंकि दिखने में तो मनुष्य एक जैसे ही हैं लेकिन जीन्स तो अलग अलग होते हैं जो वहां के अपने पर्यावरण से विकसित होते हैं, तो इसलिए ज्यादा व्यावहारिक होगा। और इससे ये भी होगा कि जिनसे जेनेटिक बीमारियां आगे बढ़ती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती हैं, तो उसे भी समझा जा सकेगा। और जीन्स में बदलाव किस तरीके से होते हैं इसे भी बहुत अच्छे तरीके से इसके माध्यम से पता लगाया जा सकेगा। और यहां तक कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए आप अपनी वंशावली का पता लगा सकेंगे, ये बहुत ही गजब की बात होगी। तो इस तरह से आप सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि जो बीमारियां हैं उसके इलाज में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर अखबारों में आज की छपी है और वह है धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर। आपको मालूम है कि जो सबरीमाला मंदिर का जो मामला था अब उसे बहुत विस्तृत रूप दे दिया गया है और जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो इस पर बहुत विस्तार के साथ बातें कर रही है। तो जो सबरीमाला मंदिर के माध्यम से जो बातें अब सामने आ रही हैं, तो जो 7 प्रश्न हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिए हैं कि इसके तहत वह इन 7 प्रश्नों पर डिटेल में विचार करेगी। मैं उसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि वो 7 मुद्दे कौन कौन से हैं, बस सामान्य रूप में आपको यह यूं कह लीजिए कि संकेत के तौर पर गाइड करना चाहूंगा कि इसमें जो मुद्दे लिए गए हैं उसमें हमारे 2 अनुच्छेद शामिल हैं सबसे ज्यादा, वह अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26, 25 एंड 26। तो मेरी सलाह है कि जो आर्टिकल 25 है और जो आर्टिकल 26 है इसके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे से जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। और ये दोनों के दोनों जो हमारे आर्टिकल्स हैं ये बेसिकली धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं, हालांकि 27 भी धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, 28 भी धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, लेकिन अभी जो न्यायालय ने फिक्स किए हैं उसका संबंध मूलतः अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 से है। तो आप भ्रमित न हो कि 25-26 दूसरों से कैसे अलग है, तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, इसके केंद्रीय भाव को समझ लीजिए। जो आर्टिकल 25 है वो कहता है इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, अबाध बिना किसी बाधा के आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसका अधिकार होगा। ये 25 है। और आर्टिकल 26 के अंतर्गत फिर दिया है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, यानी कि संप्रदाय की जो ब्रांच होगी, निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। मतलब ये धार्मिक संप्रदायों के बारे में है कि उनको कुछ अधिकार प्राप्त होंगे, जैसे कि वो अपनी संस्थाएं बना सकते हैं, वो अपने धर्म विषय कामों का प्रबंधन कर सकते हैं, वो संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, इस तरह के कुछ बातें इसके तहत शामिल की गई हैं। तो अनुच्छेद 25 और 26, और जब इसके ऊपर न्यायालय का निर्णय आएगा तो आप मान करके चलिए कि ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय होगा। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और जो मुख्य विषय है इनफैक्ट सच पूछे तो उस पर अभी बात करने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि कुछ बातें हैं जो अभी हमारे सामने आई हैं तो आपको अपडेट करने के लिए इसे बताना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे जो SC ST संशोधन कानून 2008 जो संसद ने कह लीजिए लागू किया था, पारित किया था, उसे सही कह दिया है। और कोर्ट ने यह कहा है कि अब इस कानून के तहत अगर कोई चाहेगा कि उसे अग्रिम जमानत मिल जाए तो अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। आपको मालूम है कि इससे पहले सरकार के कोर्ट ने बकायदे ये कहा था कि नहीं, अग्रिम जमानत दी जा सकती है, केस दर्ज कराने के लिए प्राथमिक जांच जरूरी है, जांच करने के बाद अगर कुछ पता लगता है कि हाँ मामला बनता है तब फिर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। आपको ध्यान होगा तो इसको लेकर के फिर राजनीतिक दलों ने बहुत ज्यादा विरोध किया था, इसका जगह जगह आंदोलन भी हुए थे, और नतीजा यह हुआ था कि केंद्र ने फिर कोर्ट के उस आदेश को उलटने के लिए बकायदे संसद में जो एक्ट था उसमें संशोधन किया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे उस एक्ट को सही ठहराया है जो बाद में पारित हुआ है और सीधे सीधे कह दिया है, अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूं कि इस एक्ट से जुड़े जो मामले होंगे उनमें अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हां, अगर इस कानून के तहत केस नहीं बनता हुआ दिखा तब फिर कोर्ट अग्रिम जमानत दे सकती है। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप ये कह लीजिए कि आरक्षण से तो जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन उस चूंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों से जुड़ा हुआ है तो मुझे लगा कि आपको अपडेट मुझे करना चाहिए। फ्रेंड्स, आरक्षण पर जो अभी कोर्ट ने बात कही है उसको देख लेकर के अब आप देखें कि राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें कहने लगे हैं। संसद में भी इसको लेकर के बहस की शुरुआत हो गई है और ये कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल संसद है ही इसलिए, और आरक्षण का जो मुद्दा है कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस बात का नहीं है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर एक आप डेमोक्रेटिक सेटअप को लेकर के चलते हैं जो है ही, तो स्वाभाविक है कि सबको समान अधिकार हो और सब को आगे बढ़ने का भी अधिकार हो, और भारत की व्यवस्था कुछ ऐसी रही है सामाजिक व्यवस्था कि कुछ वर्ग विशेष किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, जाति प्रथा के कारण उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो ऐसे में बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप उस व्यवस्था को बनाए रखेंगे तो ये वर्ग कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो लॉजिकली बिल्कुल सही है कि आरक्षण होना चाहिए, इसीलिए सभी दल देखिए कि आरक्षण की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो बहस आ रही है वो ये है कि अभी तक हमने इतने सालों तक जो आरक्षण दिया है इसका लाभ वास्तव में मिल पाया या नहीं मिल पाया। इसके बारे में जो एक बहुत अच्छा जो तर्क दिया जाता है वो क्रिमी लेयर का तर्क दिया जाता है जो ओबीसी के मामले में है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके आरक्षण के मामले में यह है कि एक निश्चित आमदनी से ऊपर का व्यक्ति भले ही या परिवार का जो सदस्य होगा भले ही ओबीसी को बिलोंग करता है लेकिन अगर आय उसकी इससे अधिक है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लॉजिकली अब ये बात कही जा रही है कि यह व्यवस्था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण में भी लागू की जाए ताकि इसका आधार व्यापक हो सके, यानी कि जो लोग अभी इसका लाभ उठाने से वंचित रह गए हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो यहां लॉजिकली आप सोचेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन फिर समाज है और फिर राजनीतिक दल हैं, वो अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बातें करेंगे, सुप्रीम कोर्ट अपने ढंग से अपने जजमेंट देगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास तो जो आधार है निर्णय देने का वो संविधान है, वो संविधान के तहत अपनी बात कहेगा। और कल अभी पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो आरक्षण है वो कोई मौलिक अधिकार नहीं है और सरकार आरक्षण देने को बाध्य नहीं है और सरकार की यह इच्छा है कि वह किसी वर्ग विशेष को आरक्षण दे या न दे। और यह बात उसने पदोन्नति के मामले में कही थी, प्रमोशन के मामले में कही थी, जिसके बारे में हम लोगों ने कल थोड़ी सी चर्चा की भी थी। तो दोस्तों, अभी फिलहाल मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। इस इश्यू पर जो भी बहस हो रही, जो भी अपने अपने तर्क दे रहे हैं, आप बिल्कुल तटस्थ भाव से, आप बायस्ड मत होइए किसी के भी पक्ष में, तटस्थ भाव से चीजों को सुनते रहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते रहिए, आपके पास कुछ बहुत अच्छे लॉजिकल पॉइंट्स तैयार हो जाएंगे और फिर उसके आधार पर आप अपना मानस बनाइएगा। और खासकर जो स्टूडेंट अब सिविल सर्विस के इंटरव्यू में जाने वाले हैं उनके लिए ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और उन्हें चाहिए कि वे इस पर अपना दृष्टिकोण स्थापित कर लें, लेकिन बहुत ही लॉजिकल तरीके से। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: अंकित यादव, प्रभाकर कुमार माचवे, रंजनी कुमार सोनी, नेहा नागवंशी, वीरेंद्र मेहता अल्मोड़ा उत्तराखंड से, चिराग ताम्रकर भोपाल से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।